वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक 8, 9 और 10, 11, 12। प्रकृति पुरुष तथा चेतना अमानित्वम् अधम्वित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम् शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् आसक्तिर अनाविश्यं पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं तिष्ठोनिष्ठोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अविविचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं अमरजित्वर्ज जन संसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमितिं प्रोक्तम् अज्ञानम् यदोन्यतः। अनुवाद और तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। कभी कभी अल्प अज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतक्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों की विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकालने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहां पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इसे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मई च अन्य योग्य न भक्तिर अव्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं विकसित हो आती है। जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहां तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहां पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है, इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत है। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उनके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। चूंकि हम यह अपने सुंदर तात्पर्य में मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, इस जीवन का उद्देश्य क्या है और कैसे इस जीवन के उद्देश्य को हम हासिल या प्राप्त कर सकते हैं। जब तक जैसे हम भगवान का दर्शन करते हैं उसी प्रकार से यहां भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, इसका नियमित रूप से दर्शन करना चाहिए। जैसे हम शास्त्र में पढ़ते हैं, जिस समय जो गौतम बुद्ध थे उनके भविष्य में ऐसा लिखा था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आध्यात्मिक जीवन को अपनाएंगे, तो उनके माता पिता प्रयास कर रहे थे कि उनको जन्म नहीं देखना चाहिए, मृत्यु नहीं देखना चाहिए, व्याधि को नहीं देखना चाहिए, बुढ़ापा को नहीं देखना चाहिए, ताकि अगर इन वस्तुओं का दर्शन करेंगे तो क्या होगा, उनके मन में इस भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति उत्पन्न हो जाएगी, उनको वह वहां से दूर रखना चाहते थे। लेकिन यह संभव नहीं है। जब हम इस भौतिक जगत में निवास करते हैं तो नियमित रूप से इसको देखना होगा, और जब इन वस्तुओं को देखते हैं अगर साथ साथ हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान भी होती है तो स्वाभाविक रूप से हम प्रश्न करने लगते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। वरना शास्त्र में कहा जाता है पश्यन अपि न पश्यति, जो प्राणियों के समान होते हैं वो देख रहे हैं परंतु देखते नहीं है, समझते नहीं है। इसलिए आप भगवान कहते हैं कि इनका दर्शन करना। जैसे एक कथा बताई जाती है, एक गुलाम था और वो गुलाम अपने स्वामी की बहुत प्रेम से सेवा की, और वो स्वामी ने सोचा कि इसने इतनी सेवा की है इसको अभी हम स्वतंत्र बना देते हैं। उन्होंने उनको छोड़ दिया, उन्हें कहा कि आप इतना पैसा ले लो भेंट के रूप में और अपने गुलामी से मुक्त हो जाओ। उस समय जब गुलाम लोगों को मुक्त बनाया जाता था यह बहुत विरल था, वो तो बहुत बड़ी उनकी प्राप्ति थी अगर गुलामी से मुक्त होना। वो गुलाम मुक्त हो गया, उसको बहुत पैसा भी दिया गया था। उसने सोचा कि मैं स्वयं का कुछ व्यवसाय कर लेता हूं। उसने एक बड़ी जहाज खरीद ली और उसमें बहुत सारा माल डाल दिया और एक अन्य देश में जाकर व्यापार करना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस गुलाम के लिए अपने पहले ही प्रवास में समुद्र यान में उसका जो जहाज है डूब गया सारा माल के साथ, और किसी न किसी प्रकार से बहुत प्रयास के साथ तैरता हुआ एक अलग द्वीप पर चला गया। वहां कोई जन निवास नहीं था और जाकर वो सोच रहा था कि मेरा भाग्य कैसा है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। पहले कम से कम मुझे कोई मालिक तो थे, कुछ तो खाना मिलता था, परंतु अब कुछ भी नहीं है। ऐसा विलाप कर रहा था तो सामने से उसने देखा एक बहुत बड़ी भीड़ आ रही थी, बहुत सारे लोग आ रहे थे उस द्वीप के यहां, और सब लोग जयघोष कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे नया राजा का स्वागत है। तो अचंबा रह गया कि बहुत लोग आ गए वहां, काफी लोगों के हाथ में फूल की माला थी और कोई बहुत बड़ा मुकुट ले आ रहा था। वे आकर उस गुलाम के पास आए और उसको फूल की माला पहनाई और उसके सिर पर बड़ा मुकुट रख दिया, और वो लोग कहने लगे कि आप हमारे राजा घोषित किए गए हैं। तो गुलाम सोचने लगे ये क्या हो गया, पहले गुलाम था अभी तो राजा बन रहा हूं। तो राज्य के पास चला गया, उसका अभिषेक हो गया, सारे मंत्री लोग उसकी पूजा कर रहे थे, उसका सत्कार कर रहे थे, उसको बहुत बड़ा टाइटल भी दिया गया। और जब वो अंतपुर जा रहा था, उसके साथ के जो मंत्री थे, एक बुद्धिमान मंत्री था, उसने जो रहस्य है वो बताने लगा। उसने कहा देखिए राजा जी, इस राज्य का ऐसा नियम है, नियम क्या है कि यहां केवल एक साल के लिए ही आप राजा बनोगे, एक साल पूरा होने के बाद इस राजा को एक ऐसे द्वीप में भेजा जाता है जहां कोई लोग निवास नहीं करते हैं, उधर खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और साथ में रहने के लिए कोई लोग नहीं है, इसलिए हम यहां हर साल एक नया नया राजा आता है। इन्हें इसका अर्थ क्या हो गया, एक साल के लिए राजा, परंतु उसके बाद बिना खाने के कारण भूखा रहते हुए मर जाना। उसने सोचा तो अगले साल मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो बुद्धिमान मंत्री ने कहा आपके लिए एक साल है, आप सोच सकते हो कि आपके लिए क्या करना चाहिए। और इसके पहले जो भी राजा होता था वो डर जाता था, केवल एक साल के लिए मैं जीऊंगा, तो जितना हो सके उतना वो भोग करते थे, अपना जो अगला भविष्य भूलने के लिए, कितना भयानक भविष्य है कि ऐसे प्रदेश में जाना है जहां कोई परिचय नहीं है, जहां कोई लोग नहीं रहते, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, इसलिए ज्यादा भोग किया करते थे। ये आजकल का सिद्धांत यही है, क्योंकि हम अगला जीवन जानते नहीं है क्या होगा, तो लोग ज्यादा भोग करने की इच्छा रखते हैं। जैसे एक सन्यासी बतला रहे थे, पहले भक्तगण जाकर प्रचार करते थे, लोगों को कहते थे कि देखो अगर आप पुनर्जन्म के प्रति विश्वास नहीं रखते हो, पुनर्जन्म है, आपको जानवर बनना पड़ेगा, अगर ठीक से व्यवहार नहीं करोगे तो मनुष्य योनि आपको लाभ हुआ है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो अब लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हां पुनर्जन्म है, हम जानवर बनेंगे, इसीलिए ज्यादा भोग कर लो अभी, क्योंकि आगे पता नहीं क्या होगा। यानी कि वही सिद्धांतों को लेकर लोग भोग में लग जाते हैं, तो केवल पुनर्जन्म के बारे में कहने से लोग बदलते नहीं है। परंतु ये राजा एक अच्छा व्यक्ति होने के कारण वो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास दो ऐसे चॉइस है, एक तो भोग कर लो और अगले साल मर जाओ, या दूसरा है कि वो सोच रहे थे, बहुत गंभीरता से सोचने के बाद उनके मन में ऐसा एक विचार आ गया, परमात्मा ने उनको अंदर से ऐसी प्रेरणा दी, उन्होंने कहा इस एक साल के लिए मैं राज्य का किंचित भी भोग नहीं लूंगा, बल्कि जहां मुझे भेजेंगे उस गांव को विकसित करने के लिए सारा पैसा, सारे सैनिक, सारा जो ट्रेजरी है उसको लगाऊंगा। तो उस साल के लिए, क्योंकि राजा था उसको अधिकार था, उन्होंने उस एक साल में अपना पूरा जो सेना है उसको वहां भेज दिया। वहां बहुत सुंदर सुंदर बगीचा बनाए गए, सुंदर सुंदर महल बनाया गया, खाने के लिए खेती करने लगे, बहुत सारे कुएं खोदने लगे। तो इस प्रकार से एक साल उसने पूरा प्रयास लगाकर एक साल के अंदर एक नया शहर वहां बनाया। और जब उसका राज्य समाप्त हो गया, उसका अधिकार समाप्त हो गया, उसको जबरदस्ती से वहां भेजा गया, फिर भी वो अपना जीवन सुख से बिताने लगा। इस कथा का तात्पर्य क्या है? इस कथा का तात्पर्य यही है कि हम भी इस शरीर में राजा है और हमें एक साल यानी कि 100 साल अवधि दिया जाता है यहां रहने के लिए। एक तो हम यहां रहकर इस भौतिक शरीर को भोग में लगा सकते हैं या उस शहर के लिए तैयारी कर सकते हैं, वहां का जो लोक है। जब भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं न तद भाषयते सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, यहां से हम वहां जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि गुलाम बुद्धिमान था, उसने उस एक साल के लिए भोग न लेकर वो तैयारी कर रहा था। वैसे ही मनुष्य जीवन खास करके इसलिए हमें प्रदान किया गया है, भोग करने के लिए नहीं, क्योंकि यहां भोग नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहां जो कुछ भी है दो चीजें, एक दुख है और दूसरा जो मिक्स्ड हैप्पीनेस को क्या कहते हैं, जो जहां भेसल हो, दुख का भेसल है। यानी कि आप सुख भोगने के लिए प्रयास करो, उसका जो रिएक्शन है, उसका जो परिणाम है, वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए चतुर्थ स्कंद में नारद मुनि राजा प्रचिनी भरिषद इनको एक दृष्टांत सुनाते हैं। वो पुरंजन राजा का जो आख्यान है उसको सुनाते हैं। पुरंजन राजा कोई राजा नहीं था, वो केवल एक काल्पनिक कथा थी, परंतु प्रचिनी भरिषद समझ नहीं सक रहा था, इसलिए उसको उसका ही इतिहास लेकर नारद मुनि ने कल्पना का एक नाम दिया और कहने लगे कि एक गांव में एक राजा रहा करता था, उसका नाम था पुरंजन। असली में नारद मुनि उसकी कहानी सुना रहे। अगर आप किसी के घर में जाते हो, उनको प्रचार करना है, खास करके वो बड़ा व्यक्ति है, उसको अगर प्रत्यक्ष रूप में कहेंगे तुम मूर्ख हो, तुम जानते नहीं हो कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो क्या करेगा? घर से भाग जाओ, यहां से भगा देगा। तो नारद मुनि बहुत चतुर प्रचारक होने के कारण वो अप्रत्यक्ष रूप में राजा परचिनी भरिषद को समझाने लगते हैं और पुरंजन की कहानी वहां का वहां बना देते हैं। उधर ही बैठे बैठे हो उनको वो कहानी सुना लगते हैं। और अंत भाग में नारद मुनि समझाते हैं कि पुरंजन राजा जब ऐसे भोग कर रहा था अपने राज्य में रहते हुए, और अचानक जो गंधर्व राजा था उसने उस पुरंजन राज्य के राज्य पर आक्रमण किया, और उसके जो शक्तिशाली गंधर्व सैनिक थे उनका नाम था चंडवेग, वे इतने शक्तिशाली थे वो दिखाई नहीं देते थे। उन्होंने उस पुरंजन राज्य के प्रति आक्रमण किया और सारा राज्य लूटने के लिए वो तैयार हो गए, लूटने लगे। और उसके दो प्रकार के सैनिक थे, जो स्त्रियां भी थे और पुरुष भी थे, वो आक्रमण करने लगे। और पुरंजन राजा ने जब देखा कि मेरे राज्य पर आक्रमण हो रहा है, वो बहुत प्रयास कर रहा था, उसका जो सुपरिटेंडेंट था, उसका जो सेनानी था, वो बहुत शक्तिशाली था, उसके 5 फण थे, वो एक नाग एक सर्प था, वो अपने उस राज्य की रक्षा करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति ह्रास होने लगी, वो क्षीण होता गया, वो क्रश होता गया। और इसके बीच में जब एक गंधर्व लोग, जो गंधर्व राजा का जो चंडवेग सैनिक आक्रमण कर रहे थे, साथ साथ जो काल कन्या, जो काल की जो पुत्री थी, वो भी इस पुरंजन के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ गई। उसका नाम था दुर्भागा, वो उसका नाम था जरा, वो भी उसके ऊपर आक्रमण करने लगे और वो चाहती थी कि किसी न किसी से मैं विवाह कर लो, क्योंकि वो दुर्भागा थी, काल की कन्या थी, जरा थी, कोई उसके साथ विवाह नहीं करना चाहता था। फिर वो नारद मुनि के पास आ गई। नारद मुनि कह रहे, वो मेरे पास आ गई मेरे से विवाह करने के लिए, मैंने सख्त मनाई कर दिया, मैं तो ब्रह्मचारी हूं। और प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर कोई आध्यात्मिक जीवन का पालन करता हो तो उसको जरा का कभी भय नहीं होता। भक्तों के लिए जब बुढ़ापा या बीमारी आ जाती है उसे वो डरते नहीं है। एक जर्मन में एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, ये सत्य कहानी है, बहुत श्रीमंत धनिक था, बहुत पैसा था। लेने एक दिन उसका जब घर लोगों ने खोला तो देखा कि उसने स्वयं की आत्महत्या कर ली थी। छोटा सा एक बुलेट, एक खास विशेष बुलेट आता है, वो इतना छोटा होता है कि उससे उसने अपने आप को गोली से मार दिया था। और उसने नोट लिखा था, क्या लिखा था कि मैं मेरे शरीर को देखा कि अभी वो मैं बूढ़ा बन रहा हूं, मेरा शरीर अभी जवान नहीं रह रहा है, तो इसके कारण मैं इतना भयभीत हो गया, मैं मुझे रहने की इच्छा नहीं हुई। लेकिन गोली मारते हुए भी उसको लगा कि मेरा शरीर खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए छोटा सा बुलेट लेकर अपने आप को मार लिया। लोग जब अपने आईने के सामने खड़े हो जाते हैं देखने के लिए कितने सफेद बाल आ गए, तो ज्यादा चिंता बढ़ जाती है। परंतु भक्तों के लिए जब बुढ़ापा नजदीक आ जाता है, मृत्यु नजदीक आती है, वो उतना ज्यादा उत्साही बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे उनकी मृत्यु होगी वो कहां चले जाएंगे? भगवान के धाम में जाएंगे। तो नारद मुनि ने उससे मना कर दी। फिर एक काल कन्या की पुत्री जो यवन राजा जो भय था उसके पास चली गई कि मेरे साथ आप विवाह करो, तो उसने कहा यह संभव नहीं है, मैं आपको मेरे बहन के रूप में स्वीकार करता हूं। और उसका जो भाई था प्रज्वर, उनको उसने कहा, प्रज्वर आप और जरा दोनों जाकर पुरंजन का जो स्थान है, जो पुरंजन जो गांव है, राजा पुरंजन है उसका जो शहर है, उसके ऊपर आक्रमण करो। और प्रज्वर और जरा दोनों आकर उस राज्य पर आक्रमण करने लगे। और जैसे आक्रमण करने लगे, धीरे धीरे जो सेन जो सेनानी था वो प्रयास कर रहा था राज्य को बचाने के लिए। लेकिन इसी बीच में सारे उसके परिवार के लोग, जैसे उन्होंने देखा कि अपना जो राजा है वो परास्त होता जा रहा है, धीरे धीरे एक एक करके उसका वो तिलांजलि देने लगे, बाय बाय टाटा, छोड़ने लगे उसको, परिवार के लोग छोड़ने लगे। तो इस प्रकार से पुरंजन और ज्यादा शिथिल बन गया। और अंत में उसका जो महान सेनानी था उसने भी अपना हाथ ऊपर कर दिया। तो इस प्रकार से सारे जो गंधर्व के सैनिक है उस राज्य को नाश कर दिया, लूट लिया उस गांव को और उसको पूरा समाप्त कर दिया। जब नारद ने ऐसी कहानी सुनाई प्रचिनी भरिषद को, तो प्रचिनी भरिषद को समझ गए इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तब नारद मुनि उनको समझाने लगते कि वो क्या है। पुरंजन, पुर यानी कि शरीर, और पुरंजन यानी कि जो शरीर का भोग लेता हो या शरीर में वास करता हो। नारद मुनि प्राचीनी भविष्य को लेकर हमारी कहानी सुना रहे। वो कहते कि जब जीव इस शरीर में वास करता हो, बंदी बन गया है, और बंदी बनने पर भी शरीर में भोग लेने का प्रयास करता है, भोग न मिलने पर भी प्रयास कर रहा है भोग लेने का, और जो पंच प्राण है वो सेनानी है। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहता है तब तक हम जीवित रहते हैं, इसलिए आयुर्वेदिक इसमें कहा जाता है जब जो प्राणों का इम्बैलेंस हो गया तो बीमारी हो जाती है। ये प्राण जब तक प्रयास करते रहेंगे, ऐसे जो पंच प्राण होते हैं, एक बाहर निकालने का प्रयास करता है तब उसको अंदर दबाने के लिए एक प्राण प्रयास करता रहता है, इस प्रकार से हमेशा संघर्ष चलता रहता है। एक गंधर्व राजा कौन है? गंधर्व राजा वो काल है, और काल धीरे धीरे हमारे ऊपर प्रभाव करता रहता है, और काल के जो 360 सैनिक क्या है, वो दिन और रात रहे और वो दिखाई नहीं देते। कैसे दिन बीत रहा है वो हम समझ नहीं सकते। किसी भी वृद्ध व्यक्ति से पूछो, वो कहेगा मैं अभी तक जानता हूं कि मैं 5 साल का था, अभी अभी सब कुछ फ्रेश है मेरे मन में। यानी कि क्या हो गया कि दिन इतने तेजी से बीत गए कि वो समझ नहीं सका कि भाई मैं बूढ़ा बन गया। भौतिक जगत में इतना आसक्ति होने के कारण वो समझ नहीं सकता कि साल इतने जल्दी जल्दी बीत गए। ये 360 सैनिक है दिन और रात्रि के समान। और जो काल की जो कन्या है वो क्या है? जरा। जरा यानी कि बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आ जाता है, कोई चाहता नहीं। श्रील प्रभुपाद जी यहां लिख रहे कि कोई बुढ़ापा नहीं चाहता है। कभी कभी लोग कहते, देखो भौतिक जगत में रहते हुए हमें सब कुछ समान दृष्टि से देखना चाहिए। आप जो आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, आप तो भागना चाहते हो समाज से। यू आर नॉट एडवेंचरस, आप साहसी नहीं हो। यहां तो जगत में दुख है सुख है, दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। लोग बड़े बड़े फिलॉसफी बोलते हैं, लेकिन अगर समान दृष्टि से स्वीकार करना है तो फिर लोगों ने हॉस्पिटल क्यों खोल के रखा है? लोग बुढ़ापा से क्यों दूर रहने की इच्छा रखते हैं? लोग क्यों जो व्याधि है उनसे दूर रहने की इच्छा रखते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि वो जब हमें आक्रमण करते हैं वो बहुत भयानक होते हैं, इसलिए उनको दूर रखने का हम प्रयास करते हैं। हमेशा हमें सुख की इच्छा होती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो इस भौतिक जगत में लोग रहते हैं, उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद जी, अगर किसी ने बहुत बड़ा घर बनाया और हाउस वार्मिंग यानी कि घर प्रवेश के लिए उन्होंने काफी लोगों को बुलाया है और घर में निवास करने के लिए लोग जाते हैं, पूजा हो जाती है। जैसे शिव जी की भी कथा आती है, उनकी जो पत्नी है पार्वती ने कहा कब तक हम स्मशान में रहेंगे? अगर पत्नी हो तो घर चाहिए, तो शिव जी से कहने लगे आप कब तक स्मशान में रहोगे, अपने के लिए घर क्यों नहीं बनाते हो? तो शिव जी ने कहा हमारे नसीब में नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है कि घर में रहने का। तो जबरदस्ती करने लगी, तो शिव जी अपने शक्ति के द्वारा बहुत बड़ा बंगला बनाते हैं और सारे साधुओं को संतों को बुलाया जाता है घर में प्रवेश करने के लिए, एक शुभ होना चाहिए इसलिए। और सारे संत जब आते तो दक्षिणा भी मांगते हैं, तो शिवजी के पास दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं होता तो घर ही दे देते, ले लो इस घर को ही। तो वैसे ही जब कोई अगर घर बनाता हो और जब हाउस वार्मिंग एंड घर प्रवेश का कार्यक्रम चालू है, उसके पहले ही घर को आग लगा देगा और उसको जला देगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इसको तभी तुरंत किसी हॉस्पिटल में ले जाना होगा, मेंटल हॉस्पिटल में। तो श्रील प्रभुपाद जी वैसे ही कहते कि उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति इस घर को इतना सुंदरता से सजाता है। इस भौतिक शरीर एक घर के समान है, इसको हम इतना सुंदरता से सजाते हैं। हम लोग हाल ही में पाश्चात्य देश गए थे, वहां लोगों के पास ऐसा एक घर में एक, अगर भारत में अगर कोई पूछ लो, लोगों को 3-4 सब के बारे में मालूम है। अभी तो बहुत सारे आ रहे हैं, लक्ष चंद्रिका हमाम, ये लोग को सब जानते हैं। लेकिन अगर आप किसी दुकान में चले जाओ, कितने सारे वैरायटी के सोप होते हैं, लोग उसको खरीदने में कंफ्यूजन हो जाता है, अभी कौन सा खरीद लो। लोग एक सोप खरीदने में कितना समय लगाते हैं। इसलिए जयदेव महाराज कहते हैं कि एक बार कोई अमेरिका के दुकान में चला गया, शॉप टिल यू ड्रॉप, इतना प्रयास करते रहो कि आप थक के बेहोश हो जाओगे। तो इस शरीर को सजाने में अगर हमारा पूरा जीवन चला गया, तब क्या हो जाता है कि ऐसे शरीर को केवल हमने सुंदरता से सजाया है तो इसको जलाना पड़ता है स्मशान में ले जाकर। तो क्या लाभ हो गया कि पूरा जीवन इसको सजाया परंतु जब इसका लाभ लेना हो उसी समय हम क्या कर देते हैं, इसको इस शरीर को जला देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये सबसे बड़े मूर्ख है, ऐसे इसको जला दिया। तो नारद मुनि वो कहने लगते हैं और प्रभुपाद जी कहते जो बुढ़ापा है कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। जब शुक्राचार्य ययाति राजा थे उनको शाप देते हैं क्योंकि ययाति राजा ने कुछ गड़बड़ कुछ गलत कर दी शुक्राचार्य के जो उनकी जो बेटी थी उनके प्रति, तो शुक्राचार्य को क्रोध आ गया, उन्होंने शाप दिया कि तुम तुरंत बुढ़ा बन जाओ। ये शाप बहुत बड़ा है, मरने का अगर शाप मिल गया तो तुरंत अगला दूसरा नया शरीर मिल सकता है, लेकिन बहुत दीर्घ काल तक वृद्ध अवस्था को प्राप्त करना हो तो भयंकर शाप है। और उन्होंने कहा अगर आपने मुझे इतना जल्दी बुढ़ापा का शाप दे दिया परंतु मेरे जो मन है वो तो बहुत ताजा अभी भी भोग करने की इच्छा रखता है, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे भोग करूं। तो शुक्राचार्य ने कहा जाओ आपके पुत्र के पास मांग लो, उनसे कहो कि आपका युवावस्था मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। तो क्या हो गया, जब ययाति गए अपने स्वयं के बच्चों के पास जाने के बाद किसी कोई भी देने के लिए तैयार नहीं थे। उसने वो लोग कहे कि हम क्यों दे, हमें भी हमारा भी जीवन है, कोई भी देने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर अंत में उनका एक पुत्र पुरु ने दे दिया, अपना युवावस्था अपने पिताजी को दिया, कोई देना नहीं चाहता। तो इस प्रकार से ये जो बुढ़ापा है वो कोई नहीं चाहता, परंतु बुढ़ापा हमारे ऊपर आक्रमण कर लेता है। और जब मृत्यु के समय प्रज्वर, प्रज्वर यानी कि जो बुखार आती है, जब बुखार ज्यादा चढ़ने लगते 106 तक आ जाता है तो समझ लेना चाहिए कि अब समय आ गया। लोग चर्चा करने लगते अभी हम फिरडी लेकर आएंगे इसके लिए, और व्यक्ति सोया हुआ सुन रहा है और उसकी इच्छा क्या है कि अभी भी मैं जीवित रहूं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद गीता के एक तात्पर्य में, एक बहुत बड़े उद्योगपति थे अलाहाबाद में, तो उनको डॉक्टर ने कहा कि अभी आपकी मृत्यु आ गई नजदीक, उनसे प्रणाम कर रहे थे, उनसे प्रयास कर रहे थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे मुझे और साल बचना है, और चार साल ताकि मुझे और चार फैक्ट्रियां खोलनी है। प्रभुपाद जी लिखते चार सेकंड के लिए नहीं रह सकते और चार फैक्ट्रियां खोलने की बातें कर रहा है। जब मृत्यु आ जाती है वो हमारे लिए वेट नहीं करती है, वो हमें ले जाती है। इसलिए जब नारद मुनि ये कहानी सुनाते प्राचीन भविष्यत को और कहते कि आपने अपना पूरा जीवन केवल ऐसे कर्मों को किया है केवल अपने इंद्रिय भोग को बढ़ाने के लिए, ये ठीक नहीं है, इसको बदलना है। इसलिए यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं जब हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दर्शन करते हैं और ये जानकारी हो जाती है गुरु की कृपा से कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। हमें यहां गंभीरता से रहते हुए आध्यात्मिक जीवन में भाग लेकर, हम कृष्ण भक्ति इस कारण के लिए नहीं करते कि यहां ज्यादा दिन के लिए रहना है। कभी कभी लोग कहते रहो तो कृष्ण भक्त था लेकिन जल्दी मर गया, उसमें क्या बुरी बात है। अगर कोई कृष्ण भक्त है और अगर उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है वो तो भगवान के पास चला जाता है। जैसे हमारे मुंबई में भक्त है, वो किसी से मिलने के लिए गए थे उनके व्यवहार के लिए, उनका व्यवसाय के लिए, तो उसने कहा रहे देखो ये कोई व्यक्ति थे वो हर रोज मंदिर जाया करते थे लेकिन उनकी इतनी जल्दी मृत्यु हो गई, ये ऐसा कैसे हुआ, भगवान ने क्यों नहीं बचाया। नहीं, भगवान क्यों बचाएंगे, भगवान गीता में कोई ऐसा अर्जुन को उपदेश नहीं देते कि अगर आप मेरी भक्ति करोगे तो आप 300 साल तक जीवोगे, नहीं, बल्कि भगवान ऐसा हमें एक अवकाश प्रदान करते हैं कि ये जो भौतिक शरीर में रहते हुए भी अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो मृत्यु के समय अगर हम भगवान का नाम ले सकते हैं तो क्या होगा, हमें एक ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिसमें कोई जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का विकार नहीं होगा। इसलिए धर्म को श्रीमद् भागवत में कहा गया है धर्म से ही अपवर्गस्य नार्तोर्तोपाय कल्पते, नार्तस्य धर्मकांतस्य कामलोभा ही स्मृतः। कि धर्म इसलिए नहीं उपयोग करना चाहिए हमारे इंद्रिय भोग को बढ़ाने के लिए, और धर्म से जो प्राप्त हुआ जो लाभ है उसको इंद्रिय भोग में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इन सबको जो परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे हमारे एक ब्रह्मचारी भक्त कह रहे थे, उनके जब पिताजी की मृत्यु हो गई, वो बहुत छोटे थे, 10-11 साल के थे, जब उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई तो कह रहे थे कि हर रोज उनके घर में परिवार के लोग मिलने आते थे और हर एक व्यक्ति कहता था बहुत बुरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और रोने लगते थे। वो छोटे थे, उन्होंने वो सोच रहे थे कितने बार बोलेंगे ऐसा, मुझे तो भूख लगा है। यानी कि ये लोग एक ऐसा एक व्यवहार या एक संस्कृति बन गई है, लोग सोचते कि जाकर लोगों को कहना कितना बुरा हो गया, लेकिन वो नहीं सोचते कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, मेरी भी ऐसी भी गति हो जाएगी, मुझे क्या करना चाहिए मुझे बचाने के लिए, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि धृतराष्ट्र अचानक बिना बताए गए जंगल की ओर चले गए, विलाप करने लगे, अब मेरे पिता का क्या होगा। देखो युधिष्ठिर महाराज कितने महान है, धृतराष्ट्र ने इतना उनको सताया था, फिर भी वो उनके प्रति चिंता व्यक्त कर रहे थे। तब नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि आप उनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि सबके लिए मृत्यु आ जाएगी। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे कि मृत्यु पे क्या करना चाहिए, आप केवल सोचोगे चलो हम जाकर उनको सांत्वना देंगे, उसे कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगत रहते हैं, वो ऐसा केवल नाटक नहीं करते रोने का। जैसे कि कई ऐसा समाज है, उनके लोगों के लिए रोने के लिए कोई नहीं होता, तो उनके लिए क्या करते हो, प्रोफेशनल रोने वाले होते हैं। वो आएंगे, जिसकी मृत्यु हो गई तो उनके पास आकर रोएंगे जोर जोर से, दिखाने के लिए हमारा बहुत प्रेम है। परंतु जहां सभ्य लोग हैं, वो समझ सकते हैं कि नहीं, ये मृत्यु मेरे लिए भी आ सकता है। और जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। एक बहुत बड़े भक्त है दक्षिण भारत के, वो कहते कि देखो जिसकी मृत्यु हुई है उसका शरीर गिरा हुआ है, और अब सोचकर विचार करो जिसकी मृत्यु हुई है और उसके परिवार के लोग देख रहे, वो क्या कह रहे, अब मेरा क्या होगा। वो ये नहीं सोचते कि उसका क्या होगा, वो कौन से नरक में जाए, वो उसके बारे में हम नहीं सोचते, बल्कि सोचते कि मेरा अब क्या होगा। यानी कि इतने स्वार्थी है, जब वो जीवित था उसे सब कुछ ले लो, और जब मर गया फिर भी सोचा अब मेरा क्या होगा। यानी कि जब भौतिक जगत में हम निवास करते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में जड़ भरत रघुगुण महाराज को बतलाते हैं, अगर साधारण पारिवारिक जीवन में आप रहोगे जहां भगवान की भक्ति नहीं है, जहां लोग आपस में मदद नहीं करते भगवान की भक्ति करने के लिए, ऐसा जो परिवार क्या है, वो परिवार जानवर के समान है। और परिवार के लोग, यहां प्रभुपाद जी कहते हैं अनासक्ति रखना, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम नहीं रहना, अनासक्ति का अर्थ भौतिक दृष्टि से आसक्त नहीं होना। तो जब ऐसे परिवार में रहते हुए जो सारे जो बच्चे हैं, जो पत्नी है, वो क्या बन जाते हैं, वो जानवर बन जाते हैं, वो केवल सब कुछ हरण करने के लिए, खून चूसने के लिए है, ऐसे बहुत कड़े शब्दों से बतलाते हैं। ये कितना सुंदर ऑब्जर्वेशन है कि आप देख रहे हो किसकी मृत्यु हो गई है और परिवार के लिए स्वयं के बारे में सोचते रहते कि अब मेरा क्या होगा, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि अपने बारे में आप आध्यात्मिक दृष्टि से सोचो, और जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से अपने बारे में सोचते हैं, अपने भलाई करने के लिए प्रयास करते तो उनकी भी भलाई हो जाती है, परंतु भौतिक दृष्टि से नहीं होता। इसलिए पूरा जो मनुष्य जीवन है, शास्त्र में कहा जाता है कितना विरल है मनुष्य जीवन, कई कई ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है। जैसे तुकाराम महाराज का एक अभंग है, एक एक योनि कोटि कोटि फेरा। देखो यानी कि मनुष्य जीवन एक बहुत बड़ी भेंट है। जैसे भागवत में कहा जाता है, अगर मनुष्य योनि प्राप्त होकर कोई पापमय जीवन जीता हो, जैसे भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में निवास कर रहे थे, एक लिजर्ड को क्या कहते हैं, हाँ छिपकली, एक कोई बहुत बड़ा राजा छिपकली बन गया था। गलती क्या हो गई थी उसकी, उसने दिया हुआ दान फिर से दिया था, इसलिए उसको छिपकली बनना पड़ा। देखो भौतिक जगत कितना डेंजरस है, दान दे रहा था लेकिन गलती से दोबारा वही दान दूसरे ब्राह्मण को दिया, उसको छिपकली बनना पड़ा। तो भगवान वहां कहते हैं कि अगर कोई भगवान के संपत्ति को हरण कर लेता है, और सब कुछ भगवान का ही संपत्ति है, हम उसके ऊपर स्वामित्व दिखाते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास एक कलकत्ता के बड़े व्यापारी आ गए, तो प्रभुपाद जी ने पूछा, तो आप क्या करते हो? उसने कहा, श्रील प्रभुपाद जी मैं ग्लास बनाता हूं। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, ग्लास कहां से आता है? उन्होंने कहा, सिलिकॉन से आता है। सिलिकॉन कहां से आता है? प्रकृति से आती है। प्रकृति किसकी है? वो अच्छे थे, उन्होंने कहा भगवान का है। यानी कि तुम चोर हो, तुम भगवान की प्रकृति का माल लेते हो और खुद के लिए पैसा बनाते हो। तो उसने कहा, प्रभुपाद जी मैं दान भी देता हूं। यानी कि तुम अच्छे चोर हो, चोरी करते हो लेकिन साथ साथ थोड़ा भगवान के लिए भी देते हो। यानी कि अगर कोई चोरी करता हो तो भगवान कहते हैं भागवतम में, तो ऐसे व्यक्ति को अगर भगवान को वापिस नहीं देता, केवल स्वयं के भोग के लिए स्वीकार करता है, और खास करके अगर भगवान के संपत्ति को चोरी कर लेता है, मंदिर से कोई चोरी कर लेता है और वैष्णव का कोई चोरी कर लेता है, उसको शास्त्र में कहा गया है ऐसे व्यक्ति को विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। कब तक? 60,000 साल तक। यानी कि एक योनि में हमें बार बार जाना होगा, और जो चोरी करने वाला केवल चोरी नहीं करेगा बल्कि वो सब सारे पाप करेगा, जुआ खेलेगा, गोमांस खाएगा, मादक द्रव्यों का सेवन करेगा। यानी कि अगर कोई गोमांस खाता है, मनु संहिता में कहा गया है जितने शरीर में उसके बाल होते हैं, किसके? गाय के शरीर पर बाल होते, उतने बार उसको गाय बनना पड़ेगा और उसका कत्ल होगा। यानी कि प्रकृति ऐसा बना के रखी है कि एक मनुष्य योनि में एक गलती करने से ऐसे योनियों को प्राप्त करना पड़ेगा जिससे बार बार जाना होगा। इसलिए कहते हैं कि एक एक योनि कोटि कोटि फेरा। तो सोचो 84 लक्ष योनि तुरंत प्राप्त नहीं होता, एक एक योनि में बहुत बार तक जाना पड़ता है। और ऐसे जाते जाते पता नहीं कब मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी। यानी कि इतना विरल है मनुष्य योनि को प्राप्त करना, और फिर भी हम इसको क्या करते हैं, 60 साल के बाद इसको जला देते हैं बिना कुछ किए हुए। तो कहते कि देखो कितना विरल है और इसके बारे में हम जानते नहीं है या जानने की इच्छा नहीं रखते। कहते कि भक्ति तो बाद में कर लेंगे, जैसे कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। जैसे एक विद्यार्थी थे, वो मेडिसिन का पढ़ाई कर रहे थे, उनके पिताजी को जाकर वो प्रचार करते थे, देखो भक्ति करनी चाहिए क्योंकि मृत्यु के समय जैसा विचार करोगे वैसा ही शरीर मिलेगा। उन्होंने गीता का 2 ही श्लोक सुनाया, अंतकाले च मामेव और यम वापि स्मरण भावम। तो कहने लगे, अच्छा है कि जब मैं चाहता हूं कि मुझे भगवान के पास जाना है, अब तो भोग कर लूंगा अच्छा से, और बाद में जब इच्छा है कि अभी भगवान के पास जाना है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मृत्यु के समय अगर आप मेरा चिंतन करोगे तो मेरे धाम में जाओगे, तो क्या होगा, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, यहां भी भोग करो और गोली मार लो और हरे कृष्ण बोलो, भगवान के धाम में चला जाओगे, फिर उधर भी भोग होगा, कितना अच्छा है। ये ऐसा संभव नहीं है, ये कोई मैकेनिकल नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक परिवार था और उनके माता को बच्चे लोग कह रहे थे, माता को हरे कृष्ण बोलो अभी मरने वाली है तू, लेकिन वो सब कुछ कह रही थी, अपने बेटों का नाम, अपनी पत्नी, अपने पुत्री का नाम, अपने जो बेटी का जो बेटी है उनका नाम, परंतु भगवान का नाम नहीं निकल रहा था। अंत में जब उसने देखा कि इतना मुझे कष्ट दे रहे भगवान का नाम लेने के लिए, लोग भगवान का नाम सुनकर कभी कभी इतने इतने हट्टी बन जाते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के भक्तगण प्रचार के लेकर ले गए थे, ये फ्रांस में हुआ था, इंद्रदुम्न महाराज सुनाते और कीर्तन करने के लिए गए थे, और बीच में वो कीर्तन कर रहे थे, एक बूढ़ी स्त्री अभी अभी मरने वाले, उन्होंने जब कीर्तन को देखा, अपने दोनों उंगली लगाकर उसने कान को बंद कर दिया जोर से, और प्रभुपाद जी को जाकर इंद्रदुम्न महाराज ने सुनाया। उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी हम कीर्तन कर रहे थे और एक कहानी सुनाई प्रभुपाद जी को कि एक स्त्री थी, वो इतनी हट्टी थी, उन्होंने जैसे हरिनाम सुना वो अपने कानों को बंद कर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा, यू आर सो स्ट्रांग, उसके हाथों को निकाल देना चाहिए था, उसको सुनाना देना चाहिए था, यानी कि इतने एडमेंट वो सुनने की इच्छा नहीं रखते हैं। जब वो इतना जबरदस्ती करने लगे, वो बूढ़ी कहने लगी, मैं इतना सब बोल नहीं सकती हूं। प्रभुपाद जी कहते, देखो इतना सब मैं नहीं बोल सकते हो, छह शब्द है और हरे कृष्ण केवल दो ही शब्द है। यानी कि जो जीव जो इतना आसान है भक्ति करना, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल यू मे मिस इट। भक्ति इतनी आसान है खास करके कलयुग में, और इतना आसान होने के कारण आप सोचेंगे बाद में कर लेंगे। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये जो झाड़ू वाला था जगन्नाथपुरी के मंदिर के बाहर, वो झाड़ू लगाता था, हर रोज झाड़ू लगाता था, और सोचता था मैं तो यहां ही रहता हूं, कल जाकर दर्शन करता हूं, उसमें क्या है, मैं तो इतना भाग्यशाली हूं। तो ऐसा झाड़ू लगाता रहा कितने साल तक, और सोचा कल दर्शन कर लूंगा, और एक दिन हार्ट अटैक होकर उसकी मृत्यु हो गया और कभी भी दर्शन ही नहीं किया। इसलिए सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जो ट्रेन स्टेशन के नजदीक रहते हैं उनका ही ज्यादा ट्रेन मिस हो जाता है, क्यों, वो सोचते अभी अभी आ जाएगा, मैं तो यहां से भाग जाऊंगा, लेकिन जो दूर रहते हैं वो कहते नहीं, पता नहीं एक घंटे लगेगा, फिर ट्रैफिक जाम हो जाएगा, दो घंटे पहले से हम लोग जर्नी चालू करेंगे। कई कई लोग तो आकर रात में वहां अपना बिस्तरा लगा देते हैं कि ट्रेन मिस नहीं होना चाहिए, लेकिन जो नजदीक रहते हैं वो सोचते कि ना इधर ही है। ये भारतीयों का दुर्भाग्य है, भगवान से इतने नजदीक है वो सोचते हम तो जानते हैं कल कर लेंगे, उसमें क्या है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जानिया शून्या विष खाइनू, जानबूझकर मैंने विष खाया। जयदेव महाराज बोलते हैं, जानिया विष, जानिया शून्य नहीं कि भारतीय लोग जानबूझकर विष खा रहे और बाहर जा रहे विष खाने के लिए, बाहर का विष और भी अच्छा है, ऐसे भगवान को भूल जा रहे हैं। इतना विरल मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है और इतना आसान बनाया है भगवान श्री चैतन्य देव ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, एक बार केवल हरे कृष्ण नाम लेकर। श्रील प्रभुपाद जी कहते, पाप करने के लिए चार नियमों को तोड़ने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है। अगर किसी को शराब पीना हो ऐसे ही नहीं आएगा, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसे प्राप्त करने के लिए कष्ट करना पड़ेगा, यानी कि पाप करने के लिए कष्ट करो। लेकिन भगवान कहते, मुझे प्राप्त करने के लिए कोई कष्ट नहीं करना है, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र कहकर अगर हम हमारा प्रपंच चलाते हैं, घर को भी मंदिर बनाते हैं, और जब देखते हैं कि लोग कृष्ण का नाम लेते हुए भगवान के धाम की ओर जा रहे हैं, जैसे भक्ति तीर्थ महाराज, हम उनको मिलने के लिए जाते थे नियमित रूप से, उनको मृत्यु आ रही थी लेकिन बड़े प्रसन्न चित्त के थे, उनको कोई भय नहीं था, क्यों, क्योंकि यहां रहते हुए वो गोलोक का अनुभव कर रहे थे। गोलोक में क्या है, केवल आनंद ही आनंद है, तो कोई डर नहीं था। वो लोगों को कहते थे कि चलो अभी आज जाना है कल जाना है, वो तैयार थे मरने के लिए, लेकिन भगवान ले नहीं जा रहे थे। यहां भौतिक व्यक्ति यानी कि आते यमदूत लेके जाने के लिए फिर भी कहते कल आओ, मुझे नहीं मरना है, लेकिन यहां वो कह रहे थे मुझे जाने के लिए तैयार हो, मुझे कोई डर नहीं है। क्यों? भक्त जानता है कि मेरी गति क्या है, क्योंकि मैंने पूरा जीवन भगवान के लिए दिया है, इस भौतिक जगत से हमेशा के लिए मैं मुक्त हूंगा, और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य जीवन केवल इसीलिए दिया गया है ताकि हमारा जो प्रवास है, ये जो चक्र है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र इस भौतिक जगत में, हमेशा के लिए बंद करने के लिए मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है। और गीता भागवत चैतन्य चरितामृत शास्त्र को अध्ययन करते हुए, भक्तों का संग करते हुए, इस महान दिव्य मंत्र का जप करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम इसी जन्म में श्री कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं और उनके दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है? श्रील प्रभुपाद की। अब हम कीर्तन।